विल प्रे
हम प्रार्थना करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर थैंक हम शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए प्रभु आज हम अपने जीवन को आपके सामने रखते हैं और हमारे जीवन के प्रति आपकी जो भी अभिलाषा है प्रभु उसके प्रति आप हमें प्रोत्साहन दीजिए आप हमें बताइए कि हमारे मार्ग किस तरह से अच्छे हो और हम अपने जीवन में आपके प्रति किसने अच्छे और आपको सम्मान दे सके और आपके नीति मार्गों पर चल सके इसलिए आप प्रभु आप हमें सभी को सहायता कीजिए हमें सभी को जो बोलने वाले हैं उनको भी प्रभु आपके हाथ में करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की वर्षा कीजिए और प्रभु हम सबको आपके पवित्र आत्मा में आगे बढ़ाइए अपने जीवन में प्रभु हम आपको सम्मान दे पाए ऐसा हमें अनुग्रह प्रदान कीजिए सारी सारा मान महिमा गौरव आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमेन
आमेन So something which I wanted to share today is about when we all want to follow Jesus.
और मुझे आज आपसे कुछ ऐसी बातें share करनी है जिसमें हम सभी को हम जानते हैं कि हमें प्रभु यीशु के पीछे चलना है.
And we hear so much about following Jesus and overcoming sin and living a pure life. We hear so much about that.
और हम सभी लोग इस चर्च में बहुत बार ऐसे सुनते हैं कि पवित्र जीवन कैसा होना चाहिए प्रभु के पीछे हमें कैसे चलना चाहिए हमारे जीवन में हमारा चरित्र किस तरह से होना चाहिए
सो देयर इज वन डेंजर व्हिच वी फेस इन आवर लाइफ व्हेन वी हियर दैट
लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जहां पे हमें सचेत रहना पड़ता है जहां पर हमें कुछ धोखा हो सकता है हमारे जीवन में
सो दिस इज नॉट टू टेल दैट टेल अबाउट एनीवन बट which I have seen in my life that I want to share.
लेकिन हम भाई के निजी जीवन में उन्होंने कुछ ऐसी बातें महसूस की हैं जो आपसे वो बांटना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको शायद आप प्रभु में आगे बढ़ सकें.
So one thing is where when we try to follow Jesus, we can have a form of godliness.
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें प्रभु के पीछे चलते समय हम कभी-कभी हमें सिर्फ प्रभु के जैसा बनने का हमारे प्रति हमारे चरित्र में एक ढोंग भी आ सकता है.
A form of godliness where we follow a pattern in our life where we try to do the right things.
जैसे एक कोई साचा होता है या फिर कोई ऐसा एक हम ढल जाते हैं उसमें एक एक
विश विश विश
एक हम भेष बना लेते हैं कि एक हम पवित्र जीवन करने के लिए जीने के लिए विश्वासीपन का.
So it is like I come to church and I go back. I pray every day. I read the Bible and I do many things and I feel that I am a good Christian.
बहुत बार हमें ऐसा होता है कि हम मंडली में आते हैं सहभागिता करते हैं प्रभु का वचन सुनते हैं और सभी से मिलते हैं लेकिन फिर भी हम में कुछ कमी रहती है.
We feel that we are a good Christian because we do all those activities.
और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम एक अच्छे विश्वासी हैं.
Because we do all those activities.
क्योंकि ये सारे काम जो हम बहुत ही नियम के अनुसार करते हैं.
But something is missing.
लेकिन इसमें कुछ तो भी कमी रहती है.
What is missing?
और वो क्या कमी है?
The missing thing is the life of Jesus in me.
तो पवित्र जीवन जो प्रभु का है, उसकी कमी हमारे जीवन.
So if I do not have the life of Jesus, everything I do, it is just a dead thing.
और लगे अगर सभी बातें जो हमारे जीवन में अब जो ऐसे एक यंत्र के अनुसार करते हैं, लेकिन उसमें अगर प्रभु का जीवन ही नहीं है, तो ये निष्फल है.
I can be so hard at other people and I can be so demanding and I feel that everybody should be like this and I have a stare. But there is no life inside.
मैं हमेशा ऐसा हो सकता हूँ कि कड़ा रुख रखूँ कि अच्छे बर्ताव करने चाहिए अच्छा ही सभी लोगों ने मुझसे बर्ताव करना चाहिए लेकिन मुझ में अगर वो प्रभु का जीवन ही नहीं है तो फिर ये निष्फल है.
Then I will be not only I'll be away from Jesus, I'll be drawing others away from Jesus.
तो इस प्रकार की अगर स्वभाव से मैं तो ना ही दूसरों को प्रभु के दूर भगाऊंगा बल्कि खुद भी दूर जाऊंगा.
सो इन सेकंड तिमोथी चैप्टर 3
दूसरा तिमोथी इसका तीसरा अध्याय
इन वर्स 5 इट सेज होल्डिंग टू अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस ऑल्दो दे हैव डिनाइड इट्स पावर.
दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय इसकी पांचवी आयत वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को कम मानेंगे ऐसों से परे रहना.
सो दिस आर दिस कैन बी आवर टेंडेंसी दैट आई ऑलवेज स्टिक टू अ फॉर्म आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट माय एक्सटर्नल लाइफ rather than my relation with Jesus Christ.
तो इस तरह से अगर हम हमारा कोई ऐसा भेष धारण करें कि जो प्रभु से जुड़ने का हमें बाहर से ही हम हमारे जीवन में दिखा सकते हैं लेकिन अंदर से हम काफी दूर हो.
That means I don't have the joy, I don't have the love, I don't have the character of Jesus in me, but externally I am somehow trying to do many things and I am trying to show others that I am someone just externally.
मेरे निजी जीवन में मैं काफी दूर होऊंगा कि कई मेरे प्रभु के प्रेम से उसके चरित्र से या फिर अच्छे स्वभाव से लेकिन शायद बाहरी स्वरूप से मैं लोगों को ये दिखावा कर रहा हूँगा इस बेस का.
एंड आई जीसस व्हेन ही वाज ऑन अर्थ ही कुड बी विद सिनर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स एंड पीपल ही कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड ही कुड बी विद देम.
जब प्रभु यीशु इस धरती पर अपना जीवन जी रहे थे तो वो सभी तरह के लोगों के साथ में रहते थे भले ही वो एक टैक्स कलेक्टर हो एक पापी हो या फिर कोई दूसरा तरह का आदमी हो रोगी हो.
He did not have that type of righteousness which would keep people away from him.
उन्होंने इस तरह से अपने आप को नहीं रखा था कि लोग उनसे दूर चले जाएं.
So that type of righteousness he did not have.
इस तरह का नीतिमत्व हमारे जीवन में नहीं है.
That's why when we see Jesus had a constant conflict with the Pharisees of his time.
और उस वक्त के परिशुओं के साथ में उनका हमेशा वहाँ पर उस वक्त वाद होता रहता था.
And one thing which we see in verse 7, it says always learning and never able to come to the knowledge of the truth.
तो यहाँ पर सातवीं आयत में यही लिखा है कि और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती.
That means I am interested in learning the Bible, I am interested in listening to so many messages and my life is full of messages I am hearing and I am listening but I am not coming to the knowledge, I am not coming to a relationship with Jesus.
तो हमें इस तरह से अगर स्वभाव हम रखते हैं तो हम बार बार प्रभु के वचनों को सुन सकते हैं अच्छे मैसेजेस सुन सकते हैं लेकिन वो सच से हम परे ही रह सकते हैं.
Am I connected to Jesus Christ or am I connected to messages I am hearing?
क्या मैं उन सिर्फ मैसेजेस को ही अपने आप को कनेक्ट करता हूँ या फिर प्रभु यीशु को अपने आप से वहाँ पे संबंध रखने के लिए और बढ़ाता हूँ?
There are some characteristics of people who have a form of godliness which I will just discuss, but it's just for us to judge ourselves.
लेकिन कुछ ऐसे स्वभाव गुण है जो हम आपके सामने बताने वाले हैं कि जो इन दोनों प्रति के स्वभावों को आपको दर्शाते हैं.
One is they are interested in hearing the word of God and not doing it.
पहला स्वभाव जो होता है जो वो प्रभु के वचनों को सुनने का और उसके अनुसार नहीं करने का अपने चाल चलन.
So that means I am interested in hearing the word of God.
मतलब यहाँ पर ये स्वभाव इस तरह से है कि हम काफी उत्सुक रहते हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए.
I just want to hear all the time.
मैं वो उसे हमेशा सुनना चाहता हूँ अपने स्वभाव के अनुसार.
Maybe I hear it on the computer, I hear it on the conferences, I hear it every time, but I love to hear word of God.
हमें हमेशा उसकी उत्सुकता रहती है कि हम अच्छे कॉन्फ्रेंस में जाएं कंप्यूटर पे सुनते हैं वो मैसेज और सुनते ही रहते हैं.
बट माई इंटरेस्ट इज नॉट टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड.
लेकिन हमारा जो खुद का जो स्वभाव रहता है वो उन बातों को मानकर अपने स्वभाव में और अपने चाल चलन में उन बातों को लाने के लिए हम नहीं रोकते.
इट इज बेटर टू हियर वन वर्ड एंड ओबे इट देन टू हियर हंड्रेड्स ऑफ वर्सेस एंड नॉट ओबे इट.
ये काफी बेहतर होगा आपके जीवन के लिए कि कुछ वचन आप सुने और अपने जीवन में उसको लागू करें.
Rather than hearing lot of things and not obeying anything.
अगर हम बहुत सारी बातें सुने और कुछ भी बात हम नहीं मानेंगे उससे अच्छा तो ये काफी है.
We hear about the story about the wise man and the foolish man.
हमने सुना था कि एक मूर्ख आदमी और एक विद्वान आदमी उसके बीच में का हमने एक कथा सुनी थी.
The foolish man he heard the word and the wise man also heard the word.
दोनों भी मूर्ख आदमी भी और विद्वान आदमी भी दोनों भी प्रभु का वचन सुनते हैं.
But the wise man, he heard it and he obeyed it.
मगर जो विद्वान पुरुष होता है वो वचनों को सुनता है और उनके चाल चलन में वो चरित्र में वो ढालता है.
But the foolish man just hears it.
मगर मूर्ख में व्यक्ति जो होता है वो प्रभु के वचन को सिर्फ सुनता है.
Maybe he gets excited about it.
उसे काफी वो अच्छा लगा होगा वचन.
Maybe he says the word of God is very good, I like that.
मूर्ख इंसान बोल सकता होगा कि यह वचन काफी अच्छा है यह मेरे जीवन के लिए प्रति बहुत उपयुक्त है.
बट ही विल नॉट ओबे इट.
मगर उसने उस जीवन अपने जीवन में उस वचन को नहीं अपनाया.
इन अदर वर्ड्स जीसस आल्सो स्पोक अदर पैराबल्स आल्सो.
और प्रभु यीशु ने भी उनके अलग से उदाहरण में भी ये बताया हुआ है.
लाइक द पैराबल ऑफ द सीड व्हिच फेल ऑन थॉर्नी ग्राउंड एंड फेल अमंग द हार्ड ग्राउंड एंड दोस एग्जांपल्स व्हिच जीसस गिव.
उस उदाहरण में उन्होंने बताया था कि प्रभु का राज्य किस तरह से है कि कोई अगर किसान किसी जमीन पर अनाज के बीज देता है तो वो अच्छे जमीन पर गिरता है या फिर बंजर जमीन पर गिरता है या फिर कांटों वाली जमीन पर गिरता है.
सो दोस एग्जांपल्स व्हाट जीसस वाज सेइंग वाज व्हेन वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड एम आई ईगर टू हैव आई हैविंग ए हार्ट टू ओबे इट और नॉट.
तो हमें इस उदाहरण से मालूम पड़ता है कि हमें जब भी प्रभु का वचन मिलता है तो हम उसे किस तरह से लेते हैं. क्या मैं उसे सुनने के लिए उतना ही उत्सुक हूँ
obeyed
और उसे अपने जीवन में आज्ञा उसकी मानने के लिए.
So the seed which fell on thorny ground, for example, they heard the word of God and they wanted to obey it, but the more important thing in their life was the daily joys, pleasures, and the burdens of the life. All this were more in front of them. That's why they could not obey it.
जो कांटों वाली जमीन का उदाहरण इस तरह से दिया हुआ है कि जो परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं लेकिन इन जग की अभिलाषाओं में और संसार की चिंताओं में अपने आप को इतना उलझा देते हैं कि प्रभु का वचन उनके जीवन में फलदायी नहीं होता.
सो व्हेन आई हियर द वर्ड ऑफ गॉड दैट डिजायर टू ओबे आई हैव टू रिसीव एंड आई हैव टू सरेंडर माय विल टू हिम.
तो जब भी मैं परमेश्वर की जो आज्ञा सुनता हूँ तब उस आज्ञा को अपने जीवन में मुझे अपने आप को सौंप देना है.
That means I don't want to do as I wanted to, as I was doing. I want to yield my will to Him.
जैसे हम अपनी इच्छा जो होती है वो प्रभु के हाथ में देते हैं और अपनी इच्छा से नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा से अपना जीवन बिताते हैं.
So another character of such people is they are very self-righteous.
दूसरा जो है इसमें जो चरित्र दिखाया गया है वो दूसरा स्वभाव जो है अपने आप को सही समझने वाले लोग
खुद को
धार्मिक समझने वाले.
सो दोस आर द टाइप ऑफ पीपल हु हैव अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस.
वो ऐसे दूसरा एक वेश धारण करके अपने जीवन में रहते हैं विश्वासु.
सो दोस पीपल दे वांट टू इंप्रेस अदर्स दैट दे आर राइटियस.
वो इस तरह के अभ्यास बना के अपने जीवन में व्यतीत रहते हैं कि वो लोगों को दिखाते हैं कि वो काफी नीतिमान है.
सो इन द एग्जाम्पल ऑफ द टैक्स कलेक्टर एंड द फैरिसी
परुशी और टैक्स कलेक्टर होते हैं वो इस तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया था बाइबल में.
द फैरिसी वाज जस्ट सो कॉन्शियस अबाउट व्हाटएवर गुड थिंग्स ही हैज डन.
तो परुषी जो होता है वो हमेशा इस बातों के लिए जागरूक रहता है कि उसने क्या अच्छी बातें लोगों के प्रति वहां पर दिखाने के लिए की.
एंड सेकंड थिंग ही वाज ऑलवेज कंपेयरिंग हिमसेल्फ दैट आई एम बेटर देन दिस पर्सन आई एम बेटर देन द टैक्स कलेक्टर.
और हमेशा वो अपने आप तुलना करते रहता है कि मैं इस आदमी से अच्छा हूँ मैं उस टैक्स कलेक्टर से अच्छा हूँ.
बिकॉज आई एम फास्टिंग मोर आई एम प्रेइंग मोर आई एम गिविंग मोर सो आई एम मोर बेटर देन दिस पर्सन.
कि मैं उपवास ज्यादा करता हूँ मैं दान धर्म ज्यादा करता हूँ और मैं लोगों के प्रति ज्यादा वहां पर दर्शावा करता हूँ.
बट वन थिंग विच ही लैक्ड इज ही डिड नॉट नो हिज सिन.
मगर एक जो बात होती है वो है उसका खुद का पाप उसे नजर नहीं आता.
इन जॉन चैप्टर 8
यूहन्ना इसका 8वां अध्याय
वर्स 31 there were some Jews who wanted to believe in Jesus.
31वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे शिष्य आते हैं जो प्रभु के ऊपर विश्वास रखना चाहते हैं.
But Jesus then after some discussion he reveals them that they are under the slavery of sin.
मगर उनके साथ में बातचीत करने के बाद में प्रभु को ये पता लगता है कि वो किसी पाप के गहरे जाल में है.
We all were the slaves of sin, so they are the slaves of sin. Jesus reveals them to them.
और उन्होंने प्रभु ने उनको बताया कि आप एक पाप के गुलाम हो.
So those people were not willing to acknowledge that fact.
मगर वो लोग जो ऐसे थे कि उन्होंने वो कबूल नहीं किया कि वो उस पाप के गुलाम हैं.
So whenever God speaks to me, I don't acknowledge my sin. That means I am so self-righteous.
अगर मुझे प्रभु बताता है कि किसी पाप में मैं हूँ और उसका गुलाम हूँ और मैं उसे अगर नहीं मानता हूँ तो मैं भी एक पापी हूँ.
इट्स नॉट नेसेसरी दैट गॉड विल ऑलवेज स्पीक टू मी डायरेक्टली. गॉड कैन स्पीक टू मी थ्रू मेनी पीपल.
लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रभु मुझे डायरेक्टली या फिर सीधे सीधे मुझे बताए कि आप पापी हो. मुझे बता सकता है वचनों से या फिर कोई भाई मुझे करेक्ट कर.
व्हेन डेविड सिंड ही गॉड ही डिड नॉट नो हिज सिन बट व्हेन नेथन केम दैट्स व्हेन ही रियलाइज्ड हिज सिन.
जब दाऊद जब अपना पाप वहां पर देख रहा था, लेकिन उसे पाप उसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन जब नाथान उनके सामने आए और उन्होंने उन्हें बताया, तब उन्होंने जाना कि उनके जीवन में पाप था।
बट वेन वी आर सेल्फ राइटियस, इफ समबडी पॉइंट्स आउट द सिन, आई विल इमीडिएटली डिफेंड माई सेल्फ एंड ट्राई टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन।
लेकिन अगर हम स्वधर्मी हैं तो हमारे जीवन में जब भी कोई हमें ऐसे बताता है कि आपके जीवन में पाप है, तब उस वक्त हम अपना खुद का जो स्थान है उसे दर्शाने की कोशिश करते हैं और उस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि हम पापी नहीं हैं।
In one verse, we also take one more verse in Luke 16.
और दूसरा एक वचन है लुका, इसका 16वीं अध्याय।
In that 14 and 15.
14 और 15.
There's an incident where Jesus was speaking about the love of money.
यहाँ पर बताया गया है कि प्रभु बात कर रहे हैं कि प्रेम जो होता है पैसों के प्रति।
So that Jesus was discussing, and at that time Pharisees were mocking him.
और उस वक्त जो परोशी थे उन्होंने उनकी वहां पर थट्टा मस्करी की।
Why they were mocking him, Jesus revealed in verse 15.
और इसके बारे में वचन 15 में बताता है कि क्यों उन्होंने उनका मजाक उड़ाया।
When Jesus spoke that word, maybe they were convicted in their hearts about their sin.
तब उन लोगों को वहां पर परुषी लोगों को कहीं ना कहीं उनका पाप उन्होंने जान लिया था।
And that's why they were mocking him.
और इसी वजह से उन्होंने उनका मजाक उड़ाया।
So Jesus responds saying in verse 15, you are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your heart.
वचन 15, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में नहीं महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है।
सो एम आई समबडी ट्राइज टू से समथिंग टू मी एंड आई नो आई फाइंड सम सिन इन मी, व्हाट इज माय रिएक्शन?
अगर कोई मुझे भाई आके बताता है कि मेरे जीवन में कोई पाप है, तो मैं उसे क्या जताने की कोशिश करता हूँ?
इमीडिएटली आई जस्टिफाई माई सेल्फ, नो इट वॉज लाइक दैट, ही डिड इट, आई जस्टिफाई माई सेल्फ, दैट मीन्स आई एम सेल्फ राइटियस।
क्या मैं तुरंत उस बात को मान लेता हूँ या फिर मैं उसे जताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मैं मेरे जीवन में सही हूँ?
सो दैट इज व्हाट इंडिकेट्स आई एम सेल्फ राइटियस और नॉट।
यही बात हमें दर्शाती है कि क्या हम अपने खुद के नजर में धार्मिक समझते हैं अपने आप को।
सो इफ आई एम सेल्फ राइटियस, आई विल ओनली हैव ए फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, आई विल नेवर कम टू द लाइफ ऑफ जीसस।
तो इस तरह की अगर हमारी धार्मिकता है तो हम एक तरह का भेष प्रदान करके हैं धार्मिक बनने के लिए।
We'll never get the life of Jesus.
तब उस वक्त हमें प्रभु का जीवन कभी प्राप्त नहीं होगा।
And one more area which I want to speak is in 1 Timothy.
और दूसरा एक हमें भेष है जिसके बारे में हम बताने चाहेंगे, पहला तीमोथी।
First Timothy chapter 4.
अध्याय 4.
And verse 8.
और आठवां वचन।
From verse 7.
पहले सातवां वचन हम पढ़ेंगे।
But have nothing to do with worldly fables, fit only for old women, but on the other hand, discipline yourself for the purpose of godliness.
सातवां वचन, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियां से अलग रह और भक्ति के लिए अपना साधन कर।
So it says, discipline yourself for the purpose of godliness.
तो अपने आप को इस तरह से आप शिस्तबद्ध कीजिए कि आप अच्छी बातों के लिए तैयार हो,
भक्ति के लिए। सो आई हैव टू डिसिप्लिन मायसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ गॉडलीनेस।
तो अपने आप को इस तरह से आप तैयार कीजिए कि आप भक्ति के साधन के लिए तैयार हो।
सो व्हेन आई से गॉडलीनेस, इट इज नॉट ऑल दीज थिंग्स वी स्पोक अबाउट।
तो अगर हम कहें धार्मिकता, तो ये सारी चीजें जो हमने बात की है उसके लिए ऐसा नहीं है।
सो इट इज नॉट सेल्फ राइटियसनेस, व्हेन आई से गॉडलीनेस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ राइटियसनेस।
तो सच्ची जो विश्वासोपन के जीवन है वो पवित्र जीवन में ऐसे था, अपने स्वधर्मी होना ये सही बात नहीं।
सो दोस आर टू टोटली ऑपोजिट थिंग्स, गॉडलीनेस एंड सेल्फ राइटियसनेस आर टू ऑपोजिट थिंग्स।
सो अपने आप को धार्मिक कहना और प्रभु में धार्मिक रहना, ये एक दो अलग अलग तरह के छोर है।
वन एरिया विच वी नीड टू डिसिप्लिन आवरसेल्व्स फॉर पर्पस ऑफ गॉडनेस, जस्ट रीड वर्स 12, जस्ट द फर्स्ट पार्ट, इट सेज इन स्पीच।
तो एक उसका भाग हम देखते हैं वो जो वचन 12 में है, जिसमें कहा गया है कि आपके चाल चलन, प्रेम और विश्वास।
वचन
वचनों में मतलब आपके बात करने के तरीके में.
सो आई हैव टू डिसिप्लिन मायसेल्फ फॉर इन व्हाट आई स्पीक.
तो मुझे अपने आप को इस तरह से ढालना है कि किस तरह से मैं बात करता हूँ.
सो इफ आई डू नॉट हैव दैट डिसिप्लिन इन व्हाट आई स्पीक आई कैन नॉट बी गॉडली.
तो मैं अपने आप को इस तरह से शिस्तबद्ध करता हूँ कि वचनों में मैं किस तरह से हूँ.
इफ आई डोंट डिसिप्लिन मायसेल्फ इन द वे आई स्पीक आई कैन नॉट बिकम गॉडली.
अगर मैं किस तरह से बात करता हूँ, अगर वो उस बात में अगर मैं सचेत नहीं हूँ और अपना चाल चलन उसमें ठीक तरह से नहीं रखता हूँ, तो उसमें मेरा धार्मिकपन मुझे नहीं दर्शाता.
सो वन स्क्रिप्चर विल जस्ट रीड इन व्हाट इज गॉडलीनेस.
इन एक वचन हम और पढ़ेंगे जिसमें एक सच्ची धार्मिकता क्या है अभी उसमें मालूम पड़े.
इन फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 3
पहला तिमोथी इसका तीसरा अध्याय
वर्स 16
इसकी 16वां वचन में
says by common confession great is the mystery of godliness he who was that is jesus was revealed in the flesh.
और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा से धर्मी में ठहरा.
सो इट इज जीसस क्राइस्ट हु वाज रिवील्ड इन द फ्लेश दैट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस.
और इसका एक रहस्य है कि प्रभु यीशु जो शरीर देह में प्रकट हुए और वो धर्मी ठहराए.
सो इट इज नोइंग जीसस क्राइस्ट इज गॉडलीनेस.
और प्रभु यीशु को अपने जीवन में जानना यही सच्ची धार्मिकता है.
जीसस सेज इन जॉन 17:3 दैट इटर्नल लाइफ इज टू नो जीसस क्राइस्ट एंड फादर.
और वचन भजन जॉन यूहन्ना 17 में हमको और तीसरी वचन में हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु को जानना ही सच्ची धार्मिकता है.
अनंत जीवन
की हमें पहचान होती है.
इन फिलिपियंस चैप्टर 3 पॉल स्पीक्स अबाउट नोइंग क्राइस्ट एंड गेनिंग हिम.
और फिलिपियंस इसकी तीसरे अध्याय में हमें पता चलता है संत पॉल बताते हैं कि प्रभु यीशु को पहचानना मतलब एक उसको पाना है.
सो पॉल हैड दिस सेल्फ राइटियसनेस बिकॉज ही वाज अ फैरिसी फॉर मेनी इयर्स.
और जो भी अपने आप को धार्मिक समझने वाला है वो एक आदमी एक परुषी के समान ही है.
Paul had the self-righteousness because he was a Pharisee for many years.
और पॉल जो था वो बहुत सालों तक परुषी करके ही अपने जीवन में अपना चरित्र रखा हुए.
So he was self-righteous.
तो वो अपने आप को धार्मिक समझने वाला था.
So he was righteous in himself.
तो अपने आप में ही वो अपनी धार्मिकता को संतुष्ट था.
But he says in Philippians chapter 3.
लेकिन फिलिपियों की किताबों में chapter 3 में उसने कहा है.
In verse 9 it says that I may be found in him not having a righteousness of my own derived from the law.
वचन 9 और उसमें पाया जाऊं कि न अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलता है.
So he wanted the righteousness which he can obtain through faith in Jesus Christ.
तो उस तरह की धार्मिकता पौल चाहते थे कि जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने से आती.
He says that I may know him in verse 10.
और वचन 10 में उन्होंने कहा हुआ है कि मैं उसे जानना चाहता हूँ.
That I may know the power of his resurrection.
मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी जो वहां पर मृत्यु के समानता को मृत्यु को जीतने की जो समानता है वो प्राप्त करने की.
सो ही वांटेड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस ही वांट टू एक्सपीरियंस द पावर ऑफ क्राइस्ट इन हिज लाइफ.
तो उन्हें अपने जीवन में धार्मिकता का भेष नहीं चाहिए था बल्कि उन्हें सच्ची धार्मिकता की आवश्यकता थी.
सो ही न्यू दैट क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट जस्ट डूइंग सम रिचुअल्स बट इट इज अ पावर ऑफ गॉड इन मी.
तो एक पारंपरिक ढंग से धार्मिकता उन्हें दिखाने नहीं थी तो उनको एक सच्चा धार्मिक जीवन जीना था.
इट इज नॉट कीपिंग लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस.
उनको ये नहीं दिखाना था कि किस तरह की परंपराएं हैं या फिर रूढ़ी यहाँ पर चल रही है धार्मिकता के नाम पर.
सो इट इज नॉट इवन लॉट ऑफ फिलोसॉफी ऑफ द वर्ल्ड विच वी हियर दैट यू हैव टू बी गुड एंड यू हैव टू बी काइंड एंड यू हैव टू बी डू गुड टू अदर्स. इट इज नॉट दैट रिलीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट.
उन्हें उन विचारों के ऊपर नहीं चलना था कि आपको सबसे अच्छा बर्ताव करना चाहिए आपको कुछ अच्छे सत्कर्म करने चाहिए. उस तरह के उनकी जो विचारों के ऊपर कोई धार्मिकता नहीं टिक सकती.
That is not the good news.
वो एक सुसमाचार नहीं है.
Good news is gospel is the power of God.
तो सुसमाचार एक परमेश्वर का सामर्थ्य है.
That gives me power to live a life, a godly life.
ये मुझे एक सामर्थ्य प्रदान करता है कि मैं अच्छी धार्मिकता जीवन जी सकूं.
इट गिव्स मी जॉय इन माय लाइफ.
ये मुझे पूरा आनंद मेरे जीवन में दे सकता है.
इट इज नॉट ए लाइफ वेयर आई स्ट्रगल एंड आई समहाउ डू समथिंग टू स्टिच मायसेल्फ लाइक समथिंग एंड प्रेजेंट बिफोर गॉड.
ये इस तरह का जीवन नहीं होगा कि मैं लटपटा रहा हूं मेरे विश्वासी जीवन में और किससे तो भी उसे जी रहा हूं.
But the beginning of this is a good foundation which we need to have.
और लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है वो एक अच्छी नींव के अनुसार होती है.
In Colossians chapter 2,
कलीसियों की एक किताब इसकी दूसरी अध्याय.
It says in verse 7.
सातवां वचन.
Says having been firmly rooted and now being built up.
और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते.
So it says you have to be firmly rooted and now being built up.
पहले आपको कहा गया है कि आप उसमें अच्छी तरह से इस प्रेम में जड़ पकड़ लें और फिर अपने जीवन में बढ़े.
So first I have to be rooted. Then I can be built up.
मुझे पहले इन बातों में अपनी जड़ पकड़नी है.
So what I have to be rooted in?
लेकिन मुझे किन बातों की जड़ पकड़नी है?
It says from verse 11 till 15 the fact of what Jesus' death on the cross meant for us.
तो इसमें बताया गया है वचन 11 से आगे कि कैसा प्रभु यीशु का मृत्यु हमारे जीवन में किस तरह से काम किया है.
So I have to be rooted in the fact that I come to God not based on my own righteousness.
हमें इस सच्चाई पे भरोसा रखना है कि क्या हमें परमेश्वर से किस तरह से आगे बढ़कर जड़ में उसके बढ़ना है.
No, I have to come to God based on not what I have done but on what Jesus has done.
Sorry. इसमें हमें ये बताना है कि कैसे अपने खुद के बलबूते पर नहीं तो परमेश्वर के भरोसे हम अपने जीवन में प्रभु में.
So that is one foundation which I need to lay.
तो एक अच्छी नींव है यहाँ पर जो हमें सीखनी है.
एंड अनदर फाउंडेशन विच आई नीड टू ले इज ऑल माय पास्ट सिंस एंड ऑल माय ट्रांसग्रेशन विच आई हैव डन हैज बीन फॉरगिवन.
और मुझे सारे पूर्वकालीन के जीवन के जितने भी पाप है वो सारे पापों की मुझे क्षमा मिल गई है. इस पे मुझे भरोसा रखना.
दैट इज अनदर फाउंडेशन विच आई नीड टू ले बट इट्स नॉट थ्रू माय वर्क्स बट बिकॉज व्हाट जीसस हैज डन एवरीथिंग रिलेटिंग टू माय पास्ट हैज बीन ब्लॉटेड आउट एंड देयर इज नथिंग विच आई हैव अगेंस्ट गॉड.
तो इस तरह की ये नींव रहेगी कि मुझे अपने कर्मों के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर की दया के अनुसार मुझे अपने सारे पापों के छुटकारा प्राप्त हुआ है.
एंड अनदर फाउंडेशन इज वेयर सैटन हैज नो पावर ओवर मी बिकॉज ही हैज बीन डिफीटेड ऑन द क्रॉस.
और दूसरी एक नींव है इसमें कि परमेश्वर ने शैतान को हमेशा के लिए पराजित कर दिया है और उसका कुछ भी मेरे ऊपर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं.
एंड माई ओल्ड मैन विच वॉन्टेड टू सिन हैज डाइड विथ हिम ऑन द क्रॉस.
और मेरा जो मनुष्य स्वभाव है वो उस क्रूस पर प्रभु के साथ ही मर गया है.
एंड आई एम ए न्यू क्रिएशन हैज बीन रिजरेक्टेड इन मी बाय फेथ इन जीसस क्राइस्ट.
और मैं एक नई उत्पत्ति हूँ उसमें जो जी रहा हूँ अभी प्रभु यीशु के स्वरूप.
दीज आर द फाउंडेशन दैट आई एम ए सेंट इन क्राइस्ट दैट आई एम व्हेन गॉड लुक्स एट मी ही लुक्स एट मी एज ए सेंट इन क्राइस्ट.
तो इस तरह से मुझे उस विश्वास के साथ में जीना है कि प्रभु जो मुझे देखता है तो मुझे एक निष्कलंक उसकी एक प्रतिमा उसके सामने.
That I have the confidence to go before God at any time.
मुझे एक विश्वास है कि मैं अपने जीवन में कभी भी उसके सामने जा सकता
हूं. So these are the foundations which I need to lay very deeply in my. I have to be rooted in this.
तो इस तरह की जड़ें जो मेरे जीवन में मुझे पहले अपने जीवन में लानी है.
So when we talk about these foundations, there is no not my works. It is not my works, but in what Jesus has done on the cross.
तो इस तरह से अगर हम अपने जीवन की जड़ें अपने आप को बना ले कि प्रभु ही मेरे जीवन में सब कुछ कर रहा है प्रभु का ही कार्य मेरा इसमें कुछ भी ऐसा अंतर्भाव नहीं है किसी कार्य.
सो इन दिस फाउंडेशन थिंग्स आई हैव टू गॉड प्लेस द रोल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. आई जस्ट हैव टू मेक माई ट्रस्ट इन हिम.
तो मुझे इन जड़ से इस तरह से जुड़ना है कि प्रभु ही है जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है मैं कुछ भी नहीं हूं.
सो आफ्टर आई एम फर्मली रूटेड देन आई कैन बी बिल्ट अप.
और जब मैं इन जड़ों से अपने आप को सख्ती से जोड़ लेता हूं तब प्रभु यीशु मेरे जीवन में काम करते हैं.
आई कैन बी बिल्ट अप.
तब मैं बढ़ सकता हूं मेरे जीवन.
विदाउट बीइंग रूटेड आई कैन नॉट बी बिल्ट अप.
और जब तक मेरी ये जड़े ये नींव अगर बनती नहीं है तब तक मैं उसके ऊपर बढ़ नहीं सकता.
सो बीइंग बिल्ट अप इज द कैरेक्टर ऑफ जीसस बीइंग फॉर्मड इन मी एंड आई लिविंग द लाइफ ऑफ जीसस एंड आई एम डिस्प्लेइंग हिज कैरेक्टर इन मी एंड आई एम एंड द कैरेक्टर ऑफ गॉड इज एंड आई एम डिस्प्लेइंग दैट इन माय लाइफ.
बढ़ते जाना मतलब प्रभु यीशु का चरित्र मेरे जीवन में दिन प्रतिदिन मैं प्रदर्शित कर सकूं और उसे सभी लोगों को दिख पहचान उसकी हो सके.
बट unless I am rooted, I cannot build. I cannot be built up.
लेकिन जब तक मैं जड़ नहीं पकड़ता हूँ उस प्रेम में, तब तक मैं बढ़ नहीं सकता हूँ.
So many times, what we try to do many things without being rooted.
बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस जड़ को नहीं अपने जीवन में अपनाते और उसके बिना ही कुछ ऐसे कर्म करने चले जाते.
I have not been rooted in the love of God, but I am trying to do many things.
मैं उस जड़ में, उस प्यार में अगर मैं जड़ नहीं पकड़ सकता हूँ और फिर भी अपने आप से अपने ही कर्म दिखाने की कोशिश करता हूँ.
So that becomes a very burdensome thing.
फिर मुझे उसमें बड़ी थकावट महसूस.
Because there is no relationship with Jesus Christ.
क्योंकि मेरा जो नाता है वो प्रभु के साथ में उतना गहरा नहीं.
I have not known the loving Jesus who is there with me.
तब मेरे प्रेमी प्रभु को मैं इतना नहीं पहचानता हूँ जितना मुझे पहचानना चाहिए.
So let us come to God with that hunger, Lord, I want to know you.
तो चलिए अभी प्रभु यीशु के प्यार की सच्ची भूख के साथ हम उसके पास में आए.
Jesus says, my sheep hear my voice and they follow me.
प्रभु ने इसे यीशु ने इसी वजह से कहा है कि प्रभु जो मेरी वाणी सुनते हैं वो मेरे पीछे आते हैं.
सो दे नो द वॉइस ऑफ द शेपर्ड.
तो वो पहचानते हैं कि क्या है प्रभु की वाणी.
सो व्हेन जीसस सेज आई गिव देम लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस.
और प्रभु ने उनको ये वादा किया हुआ है कि प्रभु उनको जीवन देंगे और एक अनंत जीवन देंगे.
बहुत अबंडेंट लाइफ,
एक बहुत आयत की जय.
So in that song I sing, we sang that Jesus is giving us abundant life.
तो इसमें कहा गया है कि बहुतायत का जीवन जो है प्रभु ने मुझे दिया है सामने गीत में सुना.
Not just the fact that I was just born again, but God is able to give me abundant life.
ऐसा ही नहीं है कि प्रभु ने हमें नया जीवन दिया है, नया जन्म दिया है, लेकिन ऐसा भी है कि आपको बहुतायत से उसने आशीष करके जीवन दिया.
Secret is they know the shepherd and they can hear his voice.
और यहाँ पर एक रहस्य है कि वो प्रभु की वाणी को पहचानते हैं और उसको सुनते हैं.
Am I just reading the Bible or am I able to hear his voice?
अगर आप सिर्फ प्रभु का वचन पढ़ने वाले हैं या आप उसका वचन सुनने वाले हैं.
So let us examine those things which we spoke about, especially in the area of self-righteousness and form of godliness.
तो अपने आप को हम आत्मपरीक्षण करेंगे कि क्या हम प्रभु के वाणी सुनते हैं या फिर सिर्फ उसके वचनों को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं.
Am I very hard on others? Am I very tough person where I just judge others very easily?
क्या हम दूसरों के साथ में बड़ी सख्ती से बर्ताव करते हैं या फिर उनको आप उनका न्याय करने के लिए काफी उत्सुक रहते हैं?
Because I did not know a loving Jesus, that's why I am so hard.
क्योंकि हम प्रभु यीशु के प्रेम को नहीं पहचानते, इसलिए शायद हम अपने दिल में काफी सख्त है दूसरों के प्रति बर्ताव करते समय.
So may God help us.
So प्रभु हमें आशीषित करें.
It was good to hear what
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनके वचनों से हमें सीखने को मिला आज.
We heard about the possibility of having a form of godliness.
हमें अपने जीवन में हम आत्मपरीक्षण करने का और एक मौका मिला है कि हमें एक धार्मिकता का भेस क्या हमारे जीवन में है.
But at the same time denying its power.
लेकिन इसी समय हमें अपने आप को हमें नकारना चाहिए.
There is a danger we all can have.
इस तरह का भी खतरा हमारे जीवन में हो सकता है.
So we can ask God's grace in our life and continue to work in those areas.
और हमें परमेश्वर से उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें लगातार उसके विश्वास में बढ़ाते रहें.
First areas never be satisfied with having a form of godliness.
पहले तो है वो हमें किसी भेस धार्मिकता के भेस से कभी भी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए.
Or a form of religion.
और किसी धार्मिकता के और रूढ़ी परंपराओं के पीछे नहीं चलना चाहिए.
For example, we can use the right terminologies, right words, right religious language.
जैसे धार्मिकता की बातें हो या फिर धार्मिकता के आचरण की बातें हो वो अगर हम अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए जो रूढ़ी परंपराओं से बेस्ड है.
एंड वी मे नेवर मिस ए संडे मीटिंग.
और कभी कभी हम ऐसा भी नहीं है कि कभी हम कभी संडे के सहभागिता को ना भूलें.
बट रेस्ट ऑफ द वीक वी आर लिविंग इन आवर ओन वेज.
लेकिन धार्मिकता ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे रविवार की सभा के बाद में हमारे पूरे हफ्ते की इस तरह का चाल चलन.
Thus we can give an impression to others that I am a spiritual person.
ऐसा हमने किसी भी अपने आप को ढोंग नहीं करना चाहिए कि हम बड़े धार्मिक है.
बट इट्स जस्ट ए फॉर्म.
ये एक भेस है.
वी आर सीकिंग एंड द ओपिनियन ऑफ अदर्स वी आर ग्रेटिफाइड और सैटिस्फाइड व्हेन वी गेट अ गुड ओपिनियन फ्रॉम अदर्स.
हम दूसरों के प्रति से अपेक्षा करते हैं कि हमें वो धार्मिक कहें.
एंड बट दैट एम्फेसिस इज द पावर ऑफ गॉडलीनेस.
मगर इसमें ज्यादा जो प्रभाव होना चाहिए वो परमेश्वर के सामर्थ्य.
I remember when I was young, something I heard from an Old Testament incident.
मैंने अपने पूर्वज काल के जीवन में मैंने एक पुराने नियमों से कुछ बातें सुनी थी.
I shared this before. It really challenged me.
पहले भी एक बार मैंने बात को बताई थी और ये मुझे काफी चुनौती मेरे जीवन में दी.
That is when Sheba, Queen of Sheba, visited King Solomon's palace.
जब सोलोमन राजा था और उस राजा के उसके राजकाल में शेबा की जो रानी थी उन्होंने वहां पर एक उसको भेंट दी थी.
सो व्हेन दैट क्वीन हैड हर्ड मच अबाउट सोलोमन.
और रानी ने बहुत बातें सोलोमन के राजा के वैभव के बारे में सुनी थी.
बट व्हेन शी एक्चुअली पर्सनली विजिटेड व्हाट शी हर्ड वाज नथिंग. इट वाज हिज एक्चुअल रियलिटी वाज फार मोर ग्लोरियस देन व्हाट शी हर्ड.
लेकिन जब वो उस सोलोमन राजा के राजमहल में आई तो उसने ऐसी बहुत सारी बातें देखी जो उसने नहीं सुनी थी.
सो आई वाज चैलेंज्ड टू अप्लाई दैट इन माय स्पिरिचुअल लाइफ.
तो यही मैं अपनी धार्मिक जीवन में ये इस चीज को लागू करना चाहूंगा.
माय एक्चुअल इनर लाइफ शुड बी फार मोर ग्लोरियस देन द इंप्रेशन दैट आई गिव टू अदर्स.
मेरा आत्मिक जीवन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि मैं दूसरों को किस तरह अपने आप को दिखाता हूं उससे कई गुना मेरा आत्मिक जीवन आगे होना चाहिए.
माय पर्सनल वॉक विद क्राइस्ट शुड बी फार मोर पावरफुल देन ब्रदर एंड सिस्टर गेट आइडिया अबाउट मी ऑन संडे.
मेरा निजी जीवन जो है वो प्रभु के सामने इतना सामर्थ्यशाली होना चाहिए जितना कि मेरे बारे में शायद लोग सुनते हैं कभी और मेरे बारे में वो जानते हैं.
दैट्स अ गुड प्रिंसिपल टू अप्लाई इन लाइफ.
और ये बहुत अच्छा एक नियम है जो अपने जीवन में हमने लागू करना चाहिए.
नेवर नेवर सीक एन इंप्रेशन गिविंग एन इंप्रेशन टू अदर्स.
कभी भी अपने जीवन में अपने प्रति किसी को कुछ भी अच्छी बातें समझने के लिए आप उसके प्रति उत्सुक ना रहें.
And never be satisfied when others say good opinion about ourselves.
और कुछ कभी भी संतुष्ट ना रहिए कि कोई आपकी तारीफ करे.
You can examine our own life and God also sees our life.
और आप जानते हैं कि अपने आप जीवन में आप किस तरह से हैं और आपका परमेश्वर आपको देखता है.
Your man looks at outside, God looks at the heart.
मनुष्य जो है वो सिर्फ बाहरी तौर से आपको देख सकता है. परमेश्वर अंतर.
We also have to give focus of where God looks at.
तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि परमेश्वर मुझे किस तरह से देख रहा है.
So we mentioned, we heard about the power of godliness.
तो मुझे इसमें बताना है कि जो परमेश्वर का सामर्थ्य है जो धार्मिकता में होना चाहिए.
Godliness has a power.
तो परमेश्वर का जो सामर्थ्य है.
One example of, yeah, one example of that is written in 1 Peter chapter 3.
और पहले पेतरस इसके तीसरी अध्याय में लिखा हुआ है.
This primary, it is addressed to sisters in this context.
और इसमें बताया गया है कि बहनों के लिए इसमें बताया गया.
But that principle applies to everyone, brothers also.
लेकिन जो ये नियम है वो हमारे भाइयों के लिए भी लागू पड़ता है.
The power of godliness, in other way, it is the power of character, Christ-likeness in us.
धार्मिकता की जो सामर्थ्य होती है ये हमारे जीवन में प्रभु यीशु के चरित्र को दर्शाती है.
And here he speaks about, verse 1 Peter chapter 3. In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior.
हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे ही जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय से भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींचे जाए.
This is on one side is a very challenging thing. The other side is a very powerful promise.
तो एक तरफ से एक यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती भी है और दूसरे तरफ से हम इस वचन को देखें तो इसमें बड़ा सामर्थ्य है.
If our sisters, for example, if your husband is ungodly, not a believer, even assume an evil person.
अगर हम देखें कोई ऐसी बहन है जिसके जीवन में उनके पति जो है वो विश्वासी नहीं है इतना ही नहीं बल्कि वो एक बुरे इंसान है.
This powerful promise is something which we can claim.
और इस सामर्थ्यशाली वचन के ऊपर हम भरोसा ये वादा है जो उसके ऊपर विश्वास
करते हैं. And the other, if any brothers have a wife who is not a believer or an ungodly woman or evil lady, even that brother can claim this promise.
और कोई ऐसा भाई है जो इनके पति पत्नी जो है वो विश्वास में इतनी अच्छी नहीं है या फिर वो बुरी औरत है तो भी इस वचन पे वो विश्वास कर
सकते हैं. So I don't know whether you notice, without a word we can win the heart of that person.
यहाँ पर लिखा गया है कि बिना किसी वचन के आप अपने साथी को उसके चाल चलन के द्वारा खींचे जा सकते.
There's no need of lot of advice.
यहाँ पर हमें कोई सारे उनको सलाह देने की जरूरत नहीं.
There's no need of preaching to your husband or wife.
उनको कोई सुसमाचार हमेशा सुनाने की जरूरत नहीं है.
His word is so clear, without a word, even a word is not required.
काफी साफ तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कि कोई भी शब्द के बिना बिना किसी वचन के आप ये कर सकते हैं.
But that husband or wife can be won by the behavior of their spouse.
मगर उस भाई या फिर बहन को अपने चाल चलन में ऐसा होना चाहिए उतना सामर्थ्य उनके जीवन में.
That is a power of godliness.
और यही है वो सामर्थ्य.
Power of godliness remains in our character.
तो आपके चरित्र में और आपके चाल चलन में उतना सामर्थ्य.
The transformation that has happened in our own life done by Christ.
वही परिवर्तन हमारे जीवन में प्रभु यीशु ने लेके आया उसी सामर्थ्य.
It clarifies in verse 2 as they observe your chaste and respectful behavior.
तो इस तरह से हम अपने पवित्र चाल चलन को देखकर बिना किसी वचन को हम अपने द्वारा खींच सकते हैं.
The unbelieving husband or wife will silently, even she or he not observing, silently observing the character, the power of character of his wife or her husband.
कोई भी अविश्वासी पति और पत्नी अपने अपने साथी के चाल चलन को पहले देखते हैं कितना वो पवित्र और सामर्थ्यशाली रहता है उनका जीवन उसके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन.
And without a word of preaching or advice, that heart of that person can be won.
किसी भी प्रकार के सलाह या फिर सुसमाचार के बिना भी आप उन्हें इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं.
It continues read that passage verse 3 and 4.
और तीसरा और चौथा वचन भी आप अगर आगे देखें.
Your adornment must not be merely external, braiding your hair, wearing your gold jewelry or putting on dresses, but let it be the hidden person of the heart with an imperishable quality of a gentle and quiet spirit which is precious in the sight of God.
तीसरा और चौथा वचन, तुम्हारा सिंगार दिखावटी ना हो अर्थात बाल गुंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है.
So he speaks about the actual beauty of a person is that hidden personality.
तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी जो अंतर मन की जो सुंदरता है वही वहाँ पर एक सही सुंदरता है.
The hidden person, the character, inner character, that is hidden.
जो आपका छुपा हुआ चरित्र है वही.
That is a real beauty of a person, whether it's a man or a woman.
वही सच्ची सुंदरता है जो किसी एक माँ आदमी या फिर औरत में हो सकती है.
This says which is an imperishable quality of a gentle and quiet spirit.
इसकी जैसे अब तुलना की गई है कि अविनाशी सजावट से सुसज्जित हम रहने.
Which is precious in the sight of God.
और परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है.
So when I read, I was understanding it speaks that your actual beauty is not this, it is this.
तो जब भी मैं इस बातों को पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सही सच्ची सुंदरता किसमें है. तो ये है वो सच्ची सुंदरता.
Actual beauty is the hidden person of the heart, your character.
जो छुपा हुआ आपके अंदर का जो इंसान है जो व्यक्ति है वही सच्चा सुंदर.
And our interest should be, say, a brother or sister, our interest should be develop that hidden person of the heart, which is precious before God.
तो हमारा जो वहाँ पर एक रुचि होना चाहिए जो अपने अंदर जो छुपा हुआ इंसान यह है उसी की सुंदरता.
It speaks about no external things.
भले वो अपने आप बाहर से कैसे हैं वो ऐसा उतना अच्छा है.
And is the word of God say that should not be your real beauty.
वो बाहर की जो सुंदरता है वो आपकी सही सुंदरता नहीं.
No, it speaks no, when I read no we can classify in today's language it can be some heavy makeup.
अभी आजकल की अगर भाषा में हम उसको बोलेंगे तो एक हेवी मेकअप या फिर सजावट.
सेकंड पार्ट ट्राइंग टू डेक हाउस विद अ लॉट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा.
और दूसरे अगर दूसरी भाषा में कहें तो अपने आप को बहुत सारे सोने से लाद देना.
एंड थर्ड पार्ट कुड बी थर्ड वी कैन बी वेयरिंग लॉट ऑफ फैशनेबल ड्रेस इवन टू द एक्सटेंट ऑफ इमोडेस्ट ड्रेस.
और तीसरा उसमें भाग हो सकता है कि हम बहुत सारे अपने आप को अलग ही तरह के कपड़ों में वेशा धारण करें.
सो आई वाज थिंकिंग इफ योर फोकस इज ऑन दिस एक्सटर्नल थिंग्स द हेवी मेकअप एंड डकिंग हाउसेस गोल्ड ऑर्नामेंट्स एटसेट्रा एंड कॉस्टली फैशनेबल ड्रेस इफ योर फोकस इज ऑन आवर टाइम अटेंशन इज देयर.
अगर हमारा ध्यान बाहरी सुंदरता के ऊपर अच्छे मेकअप करना या फिर बहुत अपने आप को सोने में ढालना या फिर कोई गलत तरह का कपड़े पहनना इसमें ही अगर हम अपना पूरा ध्यान लगाएंगे
देयर इज अ डेंजर दैट वी मे मिस आवर अटेंशन द रियल ब्यूटी विच इज द इनर ब्यूटी ऑफ अ पर्सन इनर पर्सनालिटी.
तो इस बात का खतरा हमें रहता है कि हमारे अंदर का जो छुपी सुंदरता है उसको हम भूल जाएं और उसको हम उसके प्रति बिल्कुल परहेज करें.
Bible says that let your moderation be known to all.
Bible कहते हैं कि आपका जो सुंदरता है वो सच्ची सुंदरता वो आपको सबके सामने दिखाई दे.
We should not be shabbily dressed or anything. We can be moderate.
आप असभ्य तरीके से किसी तरह का वेशा धारण ना करें.
One among others.
और दूसरे आप दूसरे में से एक जैसे ही लोग हैं वैसे ही आपको आपको
दर्शाएं. Instead of seeking attention to ourselves.
अपने आप को अलग दिखाने की आप ज्यादा कोशिश ना करें.
One more verse we should read in James chapter 1.
और याकूब की किताब में पहला अध्याय.
James chapter 1.
याकूब.
Verse 27. Verse James chapter 1:27.
याकूब पहला अध्याय और 27वां वचन.
Pure and undefiled religion in the sight of our God the Father is this, to visit orphans and widows in their distress and to keep oneself unstained by the world.
हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे.
In a way, the real godliness is defined for our understanding here.
और यहाँ पर सच्ची धार्मिकता के बारे में हमें बताया चलता है.
Godliness is really practical.
और वास्तविक है.
It should not be remain in doctrines and just explaining things.
इसमें कोई सिद्धांत नहीं है या फिर कोई ऐसी रहस्यमय ऐसी कोई चीज नहीं है.
It will real godliness will influence change our life.
ये जो है सच्ची धार्मिकता होती है वो सभी के जीवन को बदलने के काबिल है.
That will be visible to others.
और ये सभी को आप दर्शा सकते हैं.
We are a tree known by its fruit.
और हम ये यहाँ पर ऐसी एक पेड़ बन सकते हैं कि जो उस अच्छा फल.
For example, it will be revealed in our conduct and attitude towards underprivileged people.
जो कम विश्वासी लोग हैं वो भी हमारे जीवन को देखकर हमारे धार्मिकता को पहचान सकते हैं.
Like orphans and widows, we will have a heart for them.
जो अनाथ और विधवा जैसे लोग हैं उनके प्रति हम अपनी सुधि लेकर उनको दर्शा सकते हैं अपनी
धार्मिकता. We value them, we seek our heart is longing to help them and uplift them.
उनके प्रति प्रेम और उनकी सुधि हम लेकर हम अपना जो धार्मिकता का उनको फल दे सकते हैं.
And at the same time it's written one will seek to be unstained by the world.
और दूसरी एक उसमें गुण वैशिष्ट बताया गया है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें.
So seeking to be unstained by the world is also a part of godliness.
और अपने आप को निष्कलंक रखना इस संसार से ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है अपनी धार्मिकता में.
It's not artificial, it's not showing external, it's something coming inside out.
ये कोई हमें बनावटी ऐसी कोई दिखाने वाली धार्मिकता नहीं है. ये अंदर से आने वाली धार्मिकता है जो हम अपने आप को दर्शा सकते हैं.
I heard this example now when in the salty water of the sea the fish grow there but this fish doesn't get a taste of that salt outside.
हमें एक उदाहरण के तौर पे बता सकते हैं कि समंदर के खारे पानी में मछली जो है वो बढ़ सकती है लेकिन किसी दूसरे पानी में उसको उस तरह का बढ़ना संभव नहीं
है. So that's an example, no, each one of us could be.
तो ये एक उदाहरण हमारे जीवन में भी हमें लेना चाहिए.
So I was saying we are living in an age where such a powerful blast to overcome the ungodliness and world is so powerful to, no, to overwhelm us.
अभी संसार की जो परीक्षाएं वो वहां पर अभी इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे ऊपर उसकी आप देख सकते हो कि उपस्थिति कितनी गहरी है.
But even the midst of that, we can remain unaffected by those.
लेकिन फिर भी हम उससे निष्कलंक ऐसे जीवन को जी सकते हैं.
And that is the real godliness.
और यही है सच्ची धार्मिकता.
I want to conclude with something which I heard, about a story of a monk.
और एक पंडित की मैंने कथा सुनी थी, वो आपको मैं बताना चाहूंगा.
Who lived a so sacrificial life.
जो अपना जीवन पूरे वैराग्य जीवन में जी हैं.
Cold weather of Europe, he would also go out, look for people who anybody need warm clothes. So he will just take out his warm cloth and put on them.
जब वो यूरोप के यात्रा में गए थे और उन्होंने देखा कि कुछ लोगों के पास कपड़े नहीं है तो उन्होंने अपने कपड़े निकाल के उनको
दिए. A person who is living such a sacrificial life.
एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा दान धर्म करने वाला.
So one day when he came back from that, after giving all this warm clothes to others, he was covering, shivering, he came back.
तो वहां पर वो यूरोप में अपने सारे जो गर्म कपड़े थे उन्हीं कपड़े थे उन्होंने वो दे दान धर्म कर दिए थे और जब उनको काफी सर्दी महसूस हुई तो वो कम घर घर वापस आए.
He saw another brother who was very well dressed with warm clothes, very nicely suit and ties. He saw.
तो वो रास्ते पर उन्होंने एक आदमी को देखा तो जो काफी गर्म कपड़े पहन के वो सूट बूट में आ रहा था.
So there was a temptation, it is said, in his heart to judge that brother.
तो उनके दिल में एक ऐसी रुचि निर्माण हुई, अभिलाषा निर्माण हुई कि वो उस भाई को जांचना चाहते.
When there is so much need outside, why this brother is living, wearing such expensive clothes?
तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि ऐसे वातावरण में ये भाई साहब किस तरह से कितने ऊंचे महंगे कपड़े पहन के घूम रहे हैं.
So it says that Holy Spirit reminded him.
तो उस वक्त पवित्र आत्मा ने उनको ये याद दिलाया.
You are seeing that person, a brother in good dress.
आप उस आदमी को इतने अच्छे वस्त्रों में देख रहे हो.
So inside him, that person well dressed, and you are not so well dressed, but that person may have better heart than you.
मगर जो व्यक्ति आपसे वहाँ पर दिख रहा है आपके सामने जो ऊंचे वस्त्र पहन के उसके पास आपसे कई गुना अच्छा हृदय हो सकता है.
So he did not yield to that temptation, but he esteemed that brother. He worked in that area judging others.
तो वहाँ पर उन्होंने उस संत ने अपने आप को वहाँ पर करेक्ट किया और उन्होंने देखा कि वो वहाँ पर उन्हें उनका न्याय नहीं करना
चाहिए.
तो परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो हमारे चरित्र में अपने चाल चलन में होनी चाहिए.
It's not something external.
वो कहीं भी बाहरी तौर से आपको दर्शानी नहीं है.
परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं जो वचन हमारे सामने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे परमेश्वर ने बातें की हैं. भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो कोई मनुष्य जो है उसको वर्णन नहीं कर सकता है. गॉडलीनेस इज समथिंग वेयर मैन कैन नॉट डिफाइन इट, वो सिर्फ परमेश्वर देख सकता है. हम लोगों को देख करके उसकी भक्ति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं. ये परमेश्वर ने मुझे सिखाया क्योंकि मैं खुद इस वचन को मेरे लिए एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में लेता हूँ. क्योंकि काफ़ी बार ये जो भक्ति का जो धारण करके जो दिखावा है वो सिर्फ कुछ समय के लिए टिकता है. इट इज़ ओनली फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम. और कुछ समय के बाद फिर हमें पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं है. वी अंडरस्टैंड दैट वी आर नथिंग आफ्टर सम टाइम. समथिंग विच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एक्सप्लेन्ड इन मैथ्यू चैप्टर 6. प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसी बातों को बताया कि एक मनुष्य जो है वो किस तरीके से अपने भक्ति को परमेश्वर के सामने रखना है. ऐसा नहीं होना चाहिए एक क्या बोलते हैं उसको फर्जियो जैसा कि रास्ते में खड़े होकर अपने भक्ति को दिखाता है, स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट एंड शोइंग हिज होलीनेस एंड हिज righteousness in front of everyone. That is not what Jesus explains here. Matthew ka susamachar 6 mein hum padhte hain 5 mein ki kis tarike se prarthna karna hai. Yahan pe 5 mein aisa likhta hai ki when you pray you must not be like a hypocrite. Ek dong ya ek kapti jaisa nahi hona hai, kyunki unka जो दिखावा है वो हमेशा यही चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, लोग उन्हें प्रशंसा करें. जैसे भाई अबू ने बताया कि नो गॉड इज अ गॉड इन होली हु सीज थिंग्स विच इज होली इन हिज होलीनेस. वो गुप्त तरीके से देखता है, वो पवित्रता जो है, जो भक्ति जो है, वो अपनी तरीके से, वो एकदम गुप्त तरीके से एक मनुष्य के अंदर ढूंढता है. ही स्पिरिट सर्चेस एंड सीक्स दैट. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हमें उसके समान नहीं होना. वी शुड नॉट, मतलब मुझे अपने आप को ऐसे दिखाना नहीं है. काफ़ी बार इस वचन को मैं अपने लिए मैं लेता हूँ, क्योंकि बहुत से समय ऐसा होता है, हो सकता है घर में एक रूप धारण है. इन माई हाउस आई एम वन पर्सन, इन द चर्च आई एम अनदर पर्सन, इन द ऑफिस आई एम अ थर्ड पर्सन, एंड व्हेन टॉकिंग टू अदर्स आई एम अ फोर्थ पर्सन. कम से कम 4-5 रूप मैं धारण कर लेता हूँ, विच गॉड सीज दैट. Which my fellow believer does not see, my brother does not see it, maybe my wife does not see it, but God sees my all that character which I, sometimes I in one person I am 5, in one person I am a 6 characters I may develop, but all that वो सब कुछ जो है वो परमेश्वर देखता है. मैं कि अगर मैं 6 तरीके का इंसान का रूप धारण करता हूँ अलग अलग जगह पे, अलग अलग जगह से जब मैं रहता हूँ, परमेश्वर उसे गुप्त तरीके से देखता है, वो जानता है. और मैं काफी देर तक उसके अंदर बना नहीं रह सकता. इट्स अ टेम्पररी लाइफ विच आई अंडरस्टैंड, इट्स नॉट गोइंग टू रेस्ट्रेन. वो काफी समय तक मेरे सहायता नहीं करेगा. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताता है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, हमें गुप्त में जाना है. और वो ऐसा परमेश्वर है जो हमें गुप्त में उसका रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा. फादर हु इज इन सीक्रेट एंड योर फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड यू. और मुझे यही प्रयत्न करना है, मेरे अंदर यही आत्मा को जगाना है कि मुझे कुछ भी चीज जो है मुझे दूसरों के लिए प्रकट नहीं करना. जैसे कि भाई ने बताया कि मेरी जो भक्ति है, इट इज समथिंग विच आई हैव टू सिक्योर विद इन माई सेल्फ एंड आई शुड नॉट गिव अ आउटवर्ड लुक. मुझे एक बाहर तरीका का एक सुंदरता नहीं देना है जिससे लोगों को पता चले. पीपल शुड नॉट नो दैट माई होलीनेस. I should only reveal it to God. और मेरा हर एक बर्ताव जो है, जो तरीका है, when I'm dealing with people, when I'm dealing with in my family, many बहुत से बार मैं गिरता हूँ. बहुत से बार मेरे अंदर वो जो चीज़ जो जिस तरीके से मुझे रहना है वो जो बातें हैं वो बदल जाती है. I don't reveal that holiness, I don't reveal that godliness. So परमेश्वर यही चाहता है कि that is what the word is teaching today, and that is what we need to take, that I should not reveal that to any person. Mera jo bhakti jo hai, mujhe kisi ko dikhana nahi hai. I should not show that. It is something where it is between me and God. Aur usi tarike se mera jo sambandh jo manushya ke beech mein aur parmeshwar ke beech mein jo hai, wo ek acche tarike se bana rakhna hai. एक कपटी जैसा नहीं होना है कि मैं एक जगह में रुक खड़ा होकर के मैं दिखाऊं कि मैं इतना भक्तिमान हूं, मैं एक अच्छा सा एक वेश धारण करके अपने आप को एकदम वाइट क्लोथ्स या सफेद वस्त्र डाल करके ये दिखाऊं कि मैं एक बहुत अच्छा, मेरे अंदर कोई कपट नहीं है, मेरे अंदर कोई व्हाट यू से, देयर इज नो सिन इन मी एंड आई डोंट सिन, उस तरीके का एक ये मुझे दिखा. क्योंकि God is the one who will reward us. And एक चीज परमेश्वर कहता है कि our reward is not here. हमारा जो इनाम है वो स्वर्ग में है. So I have to look at that reward, not what I'm going to get here. क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हमें मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए we pretend and we do certain things just to please others. काफी बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है कि काफी लोगों को खुश करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ता है या मुझे कुछ
तरीके का एक वेश धारण करना पड़ता है ताकि वो मनुष्य जो है वो खुश हो जाए और मुझे एक मुझे थोड़ा उसके नज़र के सामने मैं ऊँचा रहूँ। लेकिन अगर उसी जगह में अगर कुछ मेरे ऊपर दोष लग जाता है, अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठाता है, आई डोंट लाइक इट, मतलब मैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कि मुझे फिर दुख होने लगता है कि मैं, लेकिन परमेश्वर का उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द प्लेस, वो जगह नहीं है, तुम्हारी जगह कुछ और है वेर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। और एक ऐसे एक भक्ति को धारण करना है वेर गॉड हैज़ टू सी दैट, परमेश्वर मेरे अंदर देखना है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में खुद, दैट्स द बिगेस्ट एग्जाम्पल जो मैं लेता हूँ, एक एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ही बीइंग अ गॉड, जो परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को इतना दीन किया, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ सो मच, पीपल स्पेट एट हिम, लोगों ने मारा उसको, जबकि उसके पास इतना सामर्थ्य था, इतना उसके पास शक्ति था कि वो एक आज्ञा दे पूरा पृथ्वी को नाश कर सकता था। ऐसा परमेश्वर जो अपने आप को कभी इस हिसाब से नहीं सोचा कि अपना जो महिम अपना जो सामर्थ्य को प्रकट करे, लेकिन दीन होकर के सब कुछ उसने सहा। जब लोगों ने थूका उसके ऊपर, व्हेन वही थूक अगर किसी कोई मेरे ऊपर थूकता है तो मेरे को तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तुरंत मैं उसके सामने रिएक्ट करूंगा। कोई मुझे थप्पड़ मारता है तो तुरंत मैं उसके सामने में रिएक्ट करूंगा। इफ़ एनी वन टेल समथिंग बैड टू मी और मे बी इन माई फैमिली, वैन माई वाइफ और समटाइम चिल्ड्रन दे गेट लिटिल बिट दिस विथ मी, आई गेट अनॉयड विथ लिटिल थिंग्स वी आर शेकन, छोटे बातों में इट हैपन्स विथ मी, इट हैपन्स विथ एवरी वन ऑफ अस, लेकिन दैट इज नॉट वॉट गॉड वॉन्ट्स अस, लाइक यू नो कम इन टू अ सिचुएशन वेयर आवर godliness is revealed between God and it should be between us, not to others. So Parmeshwar hame sahayata kare, God give us that grace, because without grace we cannot have that sort of strength or that sort of power, just like how Jesus went through to the point of Calvary when he had to bear that cross, and when he was nailed on that cross of Calvary, that nail which was pierced on his hands and the way he was hanged, it's not so easy what he underwent. It is something where I have to remember it every time, because he never did that. Pita ka jo yojana tha wo usne pura kiya, he fulfilled the plan of God and he underwent that cross of Calvary. I think every day I should take that cross of Calvary as a challenge, that if anything happens, I should feel that pain in myself, that this is what I should be. So God help us that not to pretend and not to show, but only let God know what is there inside. Because that is something, that's a beauty which God wants to do. It's the inner beauty, as brother said, that God wants us to reveal, and it should be between me and my God. May Lord dear Jesus help us.
There's one song that we want to sing now. And then after that, Brother Santosh can close.
Blessings on our lives, dear Lord. praise and song, our grateful hearts are ringing for binding us with love's eternal core. We seek to serve thee, conscious of our weakness, knowing full well that we are poor and frail, yet knowing too that thy almighty fullness will be our strength and we shall never fail. We want the fellowship of thy affliction, we want to glory only in thy cross. Our one desire to give thee satisfaction, and we shall count ill earthly gain as loss. Reproach and scorn this world may heap upon us, sorrows and trials may lie in our way, still we would walk with thee alone, Lord Jesus. Still we would love thee more and more each day. Give us the joy of helping others daily, sharing their griefs, their burdens and their tears. Oh Lord, oh Lord, to help the eyes to carry, to find deliverance from their sins and fears. Fill us with thy Spirit's heavenly power, make us a blessing to each one we meet. Oh, let thy life flow through us like a river, and help us spread abroad thy Savior sweet. We only long to do thy will forever, only and ever, Lord, to live for thee. Then one glad day we'll reign with thee in splendor, and share thy glory through eternity.